लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार वित्त प्रभारी सरकारों के साथ मिलकर वित्तीय क्षेत्र को उचित ढंग से विनियमित कर नागरिकों को इसके खतरों से बचाए रखें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें तथा सभी बाधाओं और अड़चनों को जीवन से दूर रखें। अल्लेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद। प्रभु जेरूसलम को पुनः बनवाता और इसराइली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 147वें भजन के प्रथम चार पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 20 पदों वाले 147वें भजन में जेरूसलम के पुनर्निर्माण की बात की गई है। इस तथ्य की ओर हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि स्तोत्र ग्रंथ के 150 भजनों का रचना काल बहुत लंबा है। इसमें इसराइली राज्य की स्थापना से लेकर बाबुल निर्वासन के बाद तक के स्तोत्र संग्रहित हैं। इसीलिए ऐसा संभव है कि 147वें भजन की रचना बाबुल में निष्कासन के बाद वापस सियों लौटे इसराइली निर्वासितों द्वारा की गई थी। अस्तु, जब बाबुल निर्वासन का अंधकार पूर्ण समय समाप्त हुआ तब एक बार फिर जेरूसलम के मंदिर का निर्माण करवाया गया और 147वें भजन के द्वारा ईश्वर की स्तुति की गई। भजनकार कहता है, प्रभु जेरूसलम को पुनः बनवाता और इसराइली निर्वासितों को एकत्र करता है। बाइबल आचार्यों ने इस भजन की व्याख्या में कहा है कि जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का स्वागत एक पिता ने किया था, उसी प्रकार पिता ईश्वर भी इसराइल के भटके हुए लोगों को पुनः सियों में एकत्र कर रहे थे। यह ऐतिहासिक वास्तविकता है और हमें स्मरण दिलाती है कि जब जब कोई भटका हुआ घर लौटता है तो हमारा दायित्व तो होता है कि हम उसका स्वागत करें तथा पुनः समाज में उसके एकीकरण का पूर्ण प्रयास करें, इसलिए कि ईश्वर दुखियों को दिलासा देने वाले ईश्वर हैं। 147वें भजन के उक्त शब्दों के अनुसार वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है।
धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, परम विशाल सभा में तुझको धन्यवाद दूंगा भगवान। जन समूह के बीच करूंगा प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, प्रभुवर मैं तेरा गुणगान। धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान।
आगे 147वें भजन के पांचवें, छठवें और सातवें पदों में भजनकार कहता है, हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। श्रोताओ, मानव जाति के प्रति पिता ईश्वर के असीम प्रेम के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि भले ही मनुष्य ने कितनी ही प्रगति क्यों न कर ली हो, उसकी प्रगति सीमित ही है। महाविज्ञानी और ज्ञानी भी केवल चंद बड़े तारों के बारे में जान पाते हैं। आसमान में विराज लाखों तारों के विषय में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। ठीक उसी प्रकार वे जीवंत ईश्वर के असीम प्रेम और उनकी अपरिमित कृपा की थाह नहीं ले पाते। वे उसका अंदाज नहीं लगा पाते। जबकि 147वें भजन का रचयिता घोषित करता है, हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। ईश्वर की शक्ति, उनकी समझदारी मानवीय मापदंडों के परे है और इस शक्ति को वे किस प्रकार प्रकट करते हैं, वे इसे दीनहीनों की मदद में प्रकट करते हैं। वस्तुतः सच तो यह है कि सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर अपने द्वारा सृजित प्रत्येक प्राणी के साथ व्यक्तिगत और प्रेममय बंधन में बंधे हुए हैं, जबकि दुष्टों के विरुद्ध हैं जो लोगों के बीच अशांति फैलाते हैं। प्रभु ईश्वर के प्रेम, उनकी समझदारी तथा हर मापदंड के परे ईश्वर की उद्धारकारी शक्ति का एहसास 16वीं शताब्दी के सुधारक मार्टिन लूथर उस समय कर पाए थे जब वे बहुत बीमार पड़ गए थे। बीमार मार्टिन लूथर को राज दरबार के एक सामंत ने अपने प्रासादी आवास में विश्राम के लिए आमंत्रित किया था। स्वच्छ वायु का पान कराने के लिए सामंत ने लूथर के लिए शिकार का आयोजन किया तथा उन्हें एक वैयक्तिक गाड़ी में शिकारियों के संग संग आगे बढ़ते रहने का परामर्श दिया था। जब लूथर अपनी गाड़ी पर एकांत में हो गए तो सब कुछ भूलकर वे भजन संहिता के पन्ने पलटने लगे और उसी समय उन्होंने कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया और जो कुछ लिखा था वह सब प्रभु ईश्वर के असीम प्रेम की गहराई का बखान कर रहा था। अनायासी उनके मुख से 147वें भजन के ये शब्द निकले, हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। आगे 147वें भजन के 7 से लेकर 11 तक के पदों में भजनकार कहता है, धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, पृथ्वी पर पानी बरसाता और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है और कौओं के बच्चों को भी जो उन्हें पुकारते हैं। वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। श्रोताओं का ध्यान हम इस ओर आकर्षित कराना चाहेंगे कि 147वें भजन का प्रत्येक खंड प्रभु की स्तुति से आरंभ होता है और बाद में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रभु की स्तुति क्यों की जानी चाहिए। पहले खंड में प्रभु की स्तुति सीयों की देखभाल के लिए थी। दूसरे खंड में प्रभु द्वारा सृष्टि की देखभाल के लिए उनकी स्तुति की गई है। इसी प्रकार तीसरे खंड में ईश प्रजा को मिली शांति के लिए प्रभु का गुणगान किया गया है। 7 से लेकर 11 तक के पदों में सृष्टि की देखभाल के लिए प्रभु ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। प्रभु आकाश को बादलों से आच्छादित करते और पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं जिससे समस्त प्राणियों को भोजन मिलता है। प्रभु ईश्वर केवल मनुष्यों की ही नहीं अपितु पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सब की देखभाल करते और उनके भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए प्रभु की कृपा पर भरोसा रखा जाए तथा दिन प्रतिदिन उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जाए।
धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान। परम विशाल सभा में तुझको धन्यवाद दूंगा भगवान, जन समूह के बीच करूंगा प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, प्रभुवर मैं तेरा गुणगान, धन्यवाद दूंगा भगवान, धन्यवाद दूंगा भगवान।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस 2021 के लिए अपने संदेश में समावेश एवं भाईचारा के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने जोर दिया है कि एक बृहद हम के द्वारा ही हमारे मानव परिवार को एकीकृत करने, न्याय और शांति के भविष्य का निर्माण करने और यह सुनिश्चित करने कि कोई भी पीछे न छूटे, इसके लिए मदद दिया जा सकता है। 107वें विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस के संदेश में संत पापा ने विश्व पत्र फ्रतेले तुत्ते की याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने चिंता एवं आशा व्यक्त की है कि जब यह स्वास्थ्य संकट समाप्त हो जाएगा तब हम उनके अथवा वे जैसे शब्दों पर विचार नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ हम की बात करेंगे। संत पापा ने कहा, यही कारण है कि मैंने इस वर्ष के विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस के संदेश की विषय वस्तु बृहद हम की ओर, ताकि इस दुनिया में हमारी आम यात्रा के लिए स्पष्ट क्षितिज की ओर संकेत दिया जा सके, रखना चाहा। विश्व अप्रवासी एवं शरणार्थी दिवस हर साल सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों के प्रति सहानुभूति और एकात्मकता व्यक्त करने के लिए निर्धारित है जो कमजोर हैं, उनके लिए प्रार्थना करने एवं अप्रवासियों द्वारा मिलने वाले लाभ के प्रति जागरूकता लाने के लिए निश्चित किया गया है। इस साल इसे 26 सितंबर को मनाया जाएगा। संत पापा ने हम के इतिहास पर ध्यान देते हुए कहा कि यह क्षितिज ईश्वर की सृष्टि योजना में प्रस्तुत है, क्योंकि ईश्वर ने मानव जाति को नर और नारी के रूप में अपने प्रतिरूप में बनाया तथा उन्हें आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। इस प्रकार ईश्वर ने नर और नारी बनाया जो अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, ताकि हम बन सकें और उनके द्वारा पीढ़ी आगे बढ़ सके। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने ही त्रित्वमय छवि में बनाया है। जब हम ईश्वर की आज्ञा भंग करते एवं उनसे दूर चले जाते हैं तब वे हमारे लिए मेल मिलाप का एक रास्ता प्रदान करते हैं, अकेले नहीं बल्कि हम के रूप में अर्थात पूरे मानव परिवार का आलिंगन करने के रूप में। इस तरह मुक्ति इतिहास में हम को शुरू से अंत तक पाते हैं और यह ख्रिस्त के रहस्य के केंद्र में भी है, जो मर गए और जी उठे ताकि वे सभी एक हो जाएं। वैटिकन के नए स्विस गार्डन द्वारा संत पापा फ्रांसिस एवं उनके उत्तराधिकारियों के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के अवसर पर वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने संत पेत्रुस महागिरजाघर में ख्रिस्त त्याग अर्पित किया। करीब 500 वर्षों पहले 6 मई 1527 को 147 स्विस गार्डों ने रोम के विनाश के दौरान पोप की रक्षा में अपनी जान गंवाई थी। उनकी यादगारी में हर साल नए स्विस गार्डों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होता है। कार्डिनल पारोलिन ने स्विस गार्डों के लिए कृतज्ञता अर्पित करते हुए परमधाम पीठ की ओर से न केवल उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया बल्कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना आभार प्रकट किया। अपने उपदेश में कार्डिनल पारोलिन ने उन्हें विश्वास में दृढ़ रहने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि पोप की सेवा और प्रभु के प्रेम के प्रति समर्पण के लिए विश्वास एवं आत्मा की शक्ति की जरूरत है। सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए उन्होंने ख्रिस्त जीवन में यीशु से संयुक्त रहने के महत्व पर जोर दिया। यीशु से संयुक्त रहने का अर्थ है अपने जीवन के हर आयाम को उनके साथ साझा करना और यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना। कार्डिनल ने कहा, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की एक विशेष योजना है और सिर्फ एक रास्ता है जिसके द्वारा हम उन्हें अपने जीवन में महान कार्यों को पूरा करने दे सकते हैं। उनका अधिक से अधिक स्वागत करना, उनकी आज्ञाओं को जीना, तुम मुझ में रहो। कार्डिनल ने स्विस गार्डों को निमंत्रण दिया कि वे मिशन के लिए बुलावे का स्वागत करने और यीशु का साक्ष्य देने के लिए कृपा हेतु प्रार्थना करें। कार्डिनल ने कहा, यीशु से संयुक्त रहना, यीशु की घोषणा करना, यही शिष्य की पहचान है। और अंत में कार्डिनल ने कहा कि आज जब नवनियुक्त गार्ड पेत्रुस के लिए अपना जीवन अर्पित करने की चाह की घोषणा करेंगे, यह एक रास्ता हो जिसके द्वारा वे महसूस कर सकें कि वे मिशनरी शिष्य हैं जो प्रेरितों के समान यीशु से अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तिमोर लेस्ते की कैथोलिक कलीसिया सरकार के साथ मिलकर एक माह पहले आए बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण करने का काम कर रही है जिसमें करीब 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी एवं हजारों लोग सुरक्षा की खोज में भागने के लिए मजबूर हुए थे। तिमोर के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव फादर लियोनार्डो मारिया अल्वेस ने बतलाया कि यह प्रयास सम्मेलन और कलीसिया के अन्य संस्थाओं के द्वारा सीधे किया जा रहा है। उन्होंने उका न्यूज को बतलाया कि सीईटी ने घरों के निर्माण में पूरी मदद नहीं दी बल्कि निर्माण के संसाधनों को उपलब्ध कराया। इस बीच कलीसिया के सामाजिक विभाग ने 58 घरों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य रखा है जिसमें 10 पूरी तरह ध्वस्त हैं, 23 उनसे कम और 25 में थोड़ी क्षति हुई है। फादर अल्वेस ने कहा कि यह कठिन समय में बाढ़ पीड़ितों को कैथोलिक धर्मदर्शों की ओर से राहत देने का प्रयास है। 5 बच्चे जिनकी माताएं बाढ़ में मौत के शिकार हो गईं, उन्हें कलीसिया द्वारा संचालित अनाथालय में लिया जाएगा। इंडोनेशिया एवं तिमोर लेस्ते में सरोजा तूफान के कारण 29 मार्च से 4 अप्रैल तक हुई भारी वर्षा से भयंकर बाढ़ आ गई और भूस्खलन हुए। फादर अल्वेस ने गौर किया कि डेली के महाधर्मदर्श खुद पीड़ितों के पास पहुंचे तथा राहत सामग्रियों का वितरण किया। उन्होंने बतलाया कि करीब $50,000 के द्वारा धर्मदर्श 15,000 बाढ़ पीड़ितों को भोजन, कपड़े एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि फंड ने कहा है कि कोविड-19 की पहली लहर ने दक्षिण एशिया में करीब 2,28,000 बच्चों और कुछ ही महीनों के अंदर 11,000 बच्चों की जान ले ली है। संयुक्त राष्ट्र के बाल आपात निधि फंड ने दक्षिण एशिया के सरकारों से अपील की है कि वे कोविड-19 की तबाही को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें क्योंकि यह बच्चों पर बहुत बुरा असर डाल रही है। दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक जोर्ज लारिया ने मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा, दक्षिण एशिया में घातक नए उछाल से हम सभी को खतरा है। यदि इसे जल्द से जल्द न रोका जाए तो यह महामारी पर कड़ी मेहनत से अर्जित वैश्विक नियंत्रण को पलटने की क्षमता रखता है। उन्होंने सरकारों से अपील की कि जहां तक बन पड़े वे इस विनाश को रोकने की कोशिश करें और जितने लोग मदद भेज सकते हैं वे तत्काल मदद भेजें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।